पूरी रात मानवी वेद के सिरहाने बैठी रही। वेदिका और बलवंत मेहरा भी वहीं मौजूद थे। तीनों की आंखों में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन किसी के मन में वेद को अकेला छोड़ने का साहस नहीं था। भरोसा जैसे किसी पर बचा ही नहीं था, और वेद की ये हालत देखकर उनका दिल लगातार दहल रहा था। बलवंत साहब ने मानवी को कई बार थोड़ा आराम करने के लिए कहा, और आखिर उन्होंने मानवी को कुछ देर सोने के लिए ज़बरदस्ती भेज दिया। मानवी मुश्किल से आधा घंटा ही सो पाई, फिर बेचैनी उसे वापस वेद के पास ले आई। वेदिका भी पूरी रात जागते जागते थक चुकी थी, पर एक माँ का दिल कैसे सो सकता था। हर धड़कन में बस एक ही दुआ थी, मेरा बेटा ठीक हो जाए। सवेरे करीब 7 बजे वेद में हलचल हुई। उसने धीमे धीमे करवट बदली। उसके माथे पर गहरी शिकन थी। जैसे ही उसने आंखें खोलने की कोशिश की, तीखा दर्द उसकी कनपटियों में उतर गया। वेदिका तुरंत उठकर उसकी ओर झुकी। वेद, आराम से बेटा, धीरे धीरे आंखें खोलो, उसने नरम आवाज में कहा। बलवंत साहब भी कुर्सी छोड़े बिना उसके करीब खिसक आए। हाँ बेटा, आराम से, घबराना मत, हम सब यहीं हैं, उन्होंने स्नेह से कहा। वेद ने फिर कोशिश की और आखिर उसकी पलकें आधी खुलीं। आसपास का कमरा धुंधला धुंधला दिख रहा था, जैसे किसी ने उसकी दृष्टि पर पर्दा डाल दिया हो। मैं कहाँ हूँ? उसकी आवाज़ बेहद कमज़ोर थी, गला सूख चुका था। वेदिका ने तुरंत पानी का गिलास उठाया और उसके होंठों से लगाया। घर में हो बेटा, तुम बेहोश मिले थे, उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर माँ होने के नाते उसने अपने डर को छुपाने की कोशिश की। वेद ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई याद ज़बरदस्ती खींचकर निकालने की कोशिश कर रहा हो। मैं किसी से मिलने रेस्टोरेंट गया था, उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं आया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, उसने अपने आप से कहा। सुबह डॉक्टर भी आ गया था, वो वेद को देखने अंदर आया। अच्छा, तो आपको होश आ गया, डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो वेद के पास आया और उसकी स्थिति चेक करने लगा। इनको अभी कुछ हल्का फुल्का खिला दीजिए, फिर दवाई दीजिए, थोड़ी देर में ये और अच्छा महसूस करेंगे, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने वेद का ब्लड प्रेशर चेक किया। बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, आप जिस खतरे में थे उससे अब पूरी तरह बाहर हैं, डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा। कुछ और हिदायतें देकर डॉक्टर बाहर चला गया। डॉक्टर के जाते ही मानवी वेद के लिए सूप लेकर आई। वो उसके बिस्तर के पास बैठकर बोली, थोड़ा सा सूप ले लो, डॉक्टर ने कहा है, पेट में कुछ जाएगा तो दवा असर करेगी। वेद ने धीरे धीरे सूप पी लिया। मानवी ने ध्यान से पूरा कटोरा उसे खत्म करवाया। इसके बाद उसे डॉक्टर की बताई हुई दवाई दे दी गई। कुछ देर में, जैसा डॉक्टर ने कहा था, वेद खुद को पहले से बेहतर महसूस करने लगा। चेहरे पर हल्की सी रंगत लौटी और उसकी सांसें भी पहले जैसी शांत होने लगीं। कमरे में बैठे तीनों, मानवी, वेदिका और बलवंत, ने एक दूसरे को राहत की नज़र से देखा। वेदराज की हालत सुधर रही थी और ये उनके लिए सबसे बड़ी सुकून की बात थी। रमेश मेहरा वेद पर नज़र रखे बैठा था। जब से उसे पता चला था कि वेद होश में आ चुका था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी बनाई हुई चाल विफल हो चुकी थी और ये बात उसे भीतर तक चला रही थी। असल में रमेश मेहरा का ये पूरा प्लान वेद को रस्ते से हटाने के लिए ही था। बलवंत मेहरा ने खुलकर ऐलान किया था, घर परिवार और ट्रस्ट के बड़े बड़े फैसलों से साफ हो चुका था कि वो वेद को बहुत जल्दी मेहरा इंडस्ट्री की कुर्सी सौंपने वाले हैं। CEO, ये पद, ये ताकत रमेश मेहरा के लिए हमेशा से लालच और जलन का कारण रही थी। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि बलवंत मेहरा का उत्तराधिकारी वेद बने। इससे पहले भी उसने वेद के खिलाफ कई छोटे बड़े प्लान रचे थे, मगर हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता था। कभी वेद संभल जाता था, कभी बलवंत साहब को शक हो जाता था, कभी हालात उसके हिसाब से नहीं चलते थे। लेकिन इस बार ये प्लान उसे खुद भी परफेक्ट लगा था। ड्रिंक में मिलाई गई दवा इतनी स्ट्रांग थी कि वो मान रहा था कि वेद इस दुनिया से चला जाएगा, पर वेद का जल्दी होश में आ जाना रमेश के लिए करारा झटका था। इस बार रमेश ने अपने बेटे वेदांत को भी शामिल नहीं किया था। वेदांत अपनी ही लाइफ में उलझा हुआ था। वेद के होश में आने की खबर फैलते ही पूरी फैमिली एक एक करके उससे मिलने आई। वेदिका की आंखों में ढेरों आशीर्वाद थे। मानवी का चेहरा राहत से भर गया था और बलवंत मेहरा पहली बार पूरी तरह थके हुए दिख रहे थे। सब लोग वेद के पास बैठकर उससे बातें करना चाहते थे, लेकिन बलवंत मेहरा ने सबको बड़े सख्त लहजे में रोक दिया। अभी वेद को आराम की जरूरत है, किसी को भी कमरे में रुकने की इजाज़त नहीं होगी। बस मानवी और बलवंत साहब रह गए थे, बाकी सब बाहर चलिए। बलवंत मेहरा खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गहरी सोच थी और अंदर कहीं एक तीव्र गुस्सा भी। उन्हें पूरा यकीन था, ये सब एक दुर्घटना नहीं बल्कि किसी की चाल थी, और अब वो केवल एक फैसला कर चुके थे। वेद को उससे भी जल्दी उनकी कुर्सी पर बैठाना होगा। उसे ताकत, अधिकार और सुरक्षा, तीनों चाहिए। इस वारिस पर अब कोई वार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थोड़ी देर बाद वेद के कमरे का दरवाजा हल्के से खुला और नन्ही सी अवनी दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में अपनी प्यारी सी गुड़िया थी और उसकी आंखों में बस अपने पापा को देखने की बेचैनी। डैड, क्या हुआ? उसने मासूमियत से पूछा। उसकी 5 साल की मीठी आवाज में घबराहट साफ छलक रही थी। वेद ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया। कुछ नहीं बेटा, बस पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। अवनी तुरंत उसके सीने से लग गई। वेद की आंखों में एक पल को नरमी तैर गई। अपनी बेटी को यूं परेशान देखना उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देता था। बलवंत साहब ने वेदिका को आंखों से इशारा किया, अवनी को बाहर ले जाओ, उन्होंने धीरे से कहा। वेदिका ने प्यार से अवनी का हाथ पकड़ा। चलो बेबी, पापा आराम करेंगे, फिर तुम मिलना। अवनी ने पीछे मुड़कर एक बार फिर अपने पापा को देखा। वेद ने हाथ हिलाया और वो अपनी दादी के साथ बाहर चली गई। मानवी भी वेदिका के पीछे जाने लगी थी, पर तभी, मानवी तुम यहीं रुको, बलवंत ने रुकने का इशारा किया। मानवी एक पल को चौंकी, फिर समझ गई कि डैड शायद वेद से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। वो चुपचाप कुर्सी पर वेद के पास बैठ गई। कमरे में अब सिर्फ वेद, मानवी और बलवंत साहब थे। माहौल गंभीर था। बलवंत मेहरा वेद की तरफ बढ़े, उसके पास बैठकर बोले, अब पूरी बात बताओ बेटा, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? वेद ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कोशिश थी याद करने की, जोड़ने की, समझने की। सच कहूं तो मुझे खुद ठीक से समझ नहीं आ रहा। कोशिश करो, बलवंत ने दृढ़ आवाज में कहा। वेद ने सिर टिकाते हुए बताया, कल मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया था, मन थोड़ा भारी था तो लॉन में टहलने निकल गया। तभी मेरे एक पुराने दोस्त का फोन आया, बोला कि सब बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तू भी आ जा। मैं उसी कपड़ों में चला गया, बस सोचा थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाऊंगा। उसके चेहरे पर उलझन साफ थी। वहां पहुंचकर हम लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, फिर किसी ने कॉफी ऑर्डर की। जैसे ही मैंने कॉफी पी, कुछ देर बाद मुझे अजीब सा लगा, सर भारी लगने लगा, आंखें धुंधली और फिर वेद रुका। उसकी उंगलियां बिस्तर की चादर को हल्के से दबाने लगी। ये वो संकेत था जब वो किसी बात को खुद पकड़ने की कोशिश करता था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मानवी ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। बलवंत मेहरा की आंखें संकुचित हो गईं। वे चुप थे, पर उनकी चुप्पी में तूफान छिपा था। वेद, उन्होंने धीमे लेकिन बेहद गंभीर स्वर में कहा, किसी ने तुम्हारे साथ ये सब गलती से नहीं किया, तुम पर सीधा वार हुआ है और ये पहली बार नहीं है। मानवी ने चिंता से उनकी तरफ देखा। वेद की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। इसके पीछे कौन है हम अच्छे से जानते हैं वेद, बलवंत मेहरा ने कहा। वेद उनका मतलब समझता था। बलवंत मेहरा का छोटा भाई रमेश मेहरा, उसी की साजिश थी और अब टाइम आ गया था जब रमेश मेहरा से सीधी बात होनी थी।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको भी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।